समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है।
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा।
आज विश्व जल दिवस है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। ये दिन जल के महत्व को जानने और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन है। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क, एंड दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड आई कैन नॉट गो मच फर्दर बाय सेइंग दैट यस मनोज, वाटर इज क्रूशियल फॉर लाइफ, सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम्स, एंड इज वेरी एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, cooking, sanitation and maintaining a healthy environment. Well, you name it and water does it for you. Very important for all of us. And we also will be presenting to you listeners a lot of interesting stuff in the next half an hour. Roughly, we'll give you latest national and international news. Also, we'll be providing you metro city updates and we'll explore today's history. That is 22nd of March. So make sure listeners that you stick around with us till the end. We'll begin with the headlines first, shall we? Union Home Minister Amit Shah has reaffirmed Prime Minister Narendra Modi-led government's zero-tolerance policy towards terrorism. Replying to a discussion on the working of the Ministry of Home Affairs in the Rajya Sabha yesterday, Mr. Shah said, in the past 10 years, the government has strengthened the security of the nation through political will and use of technology. He pointed out that the country was facing three major challenges in the past which hindered country's progress and development: terrorism in Jammu and Kashmir, left-wing extremism and insurgency in Northeast. The Home Minister emphasized that Naxalism in India will be eliminated by March next year. He also said that after coming to power, Modi government held formal talks with all armed outfits in the Northeast. He stated that from 2019 till date, 12 important peace accords have been signed. He informed the House that 10,900 youth have given up arms and joined the mainstream. On drugs, the Home Minister informed the House that in last 5 years, 23,000 kilograms of synthetic drugs worth over 14,000 crore rupees have been destroyed.
सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया को स्पष्ट रूप से पता है कि वास्तविक मुद्दा पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यूक्रेन रूस संघर्ष पर भारत का रुख सर्वविदित है। सरकार ने कहा कि भारत ने संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए सदैव दोनों पक्षों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है।
President Draupadi Murmu has said that sensitivity towards the deprived class determines the reputation of a country or society. Addressing the Purple Fest event at Rashtrapati Bhavan last evening, the president said, "Compassion, inclusiveness and harmony have been the values of Indian culture and civilization. The Purple Fest aims to raise awareness about different disabilities and their impact on people's lives and to promote understanding, acceptance and inclusion of persons with disabilities within society.
ब्रिटेन के हीथरो हवाई अड्डे से उड़ानें फिर शुरू कर दी गई हैं। पास के बिजली घर में आग लगने और बिजली कटने के कारण यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। इससे अनेक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लंदन के मुख्य हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान संचालन फिर शुरू करने के लिए उसकी टीमों ने अथक प्रयास किए। हीथरो हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस वर्ल्ड बाई ने कहा कि आज से विमानों का संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। हजारों उड़ानों का संचालन ठप होने के अलावा बिजली कटने से व्यापक परेशानी हुई और आसपास के अनेक घर तथा स्थानीय कारोबारी भी प्रभावित हुए। इस बीच लंदन अग्निशमन दल ने जानकारी दी है कि हीथरो हवाई अड्डे के पास अब हालात नियंत्रण में है।
Well, we have another international update. US President Donald Trump has announced that aviation giant Boeing will build the next generation fighter jet F-47 for the American Air Force. Talking to media in the presence of Defense Secretary Pete Hegseth at the Oval Office last night, President Trump said F-47s will be the most advanced, capable and lethal aircraft ever built. He said United States will sell a toned-down version of the aircraft to certain allies. The announcement is seen as a major blow to Lockheed Martin, Boeing's main competitor and maker of the high-profile F-35 and F-22 Raptor fighter jets.
बिहार के पटना में सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कल क्वाड स्पर्धा के कांस्य पदक जीत लिए। सेमीफाइनल में पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक थाईलैंड ने और रजत पदक वियतनाम ने जीता। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत ने सिंगापुर को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक वियतनाम ने और रजत पदक थाईलैंड ने जीता। टूर्नामेंट में आज डबल्स मैच शुरू होंगे।
Now let's turn our attention to cricket. The 18th edition of the Indian Premier League IPL 2025, it is set to kick off today, marking the start of another season of high-octane T20 cricket. We have a report. Listen in.
Cricket fever is set to grip the world once again as the biggest stars in the game converge for the grand spectacle of the IPL. The action kicks off this evening with a blockbuster opening match as defending champions Kolkata Knight Riders, KKR, take on Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 PM IST. Virat Kohli will take center stage for RCB, supporting his captain Rajat Patidar as they don their signature red and black. Meanwhile, KKR, led by the legendary Ajinkya Rahane, will aim to begin their title defense in style, donning their iconic purple. But before the cricketing fireworks begin, fans will be treated to a dazzling opening ceremony featuring spectacular performances by Bollywood sensation Disha Patani, the soulful Shreya Ghoshal and Punjabi powerhouse Karan Aujla. With 10 teams battling it out across 74 thrilling matches, the road to the grand finale on 25th of May promises breathtaking performances and unforgettable finishes. With Bimal Mohapatra, Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कल राष्ट्रीय ध्वज और देश के महानायकों की मूर्तियों के सम्मानजनक रखरखाव के लिए दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों, अधिकारियों और संगठनों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थापित राष्ट्रीय ध्वजों की गरिमापूर्ण देखभाल और उनके आसपास की वस्तुओं के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
Now another update is from Chennai. The Greater Chennai Corporation has decided to rename Ramakrishnapuram First Street in West Mambalam, the residential street of former Indian cricketer R. Ashwin, in his honour. The decision came after reviewing of the Ramakrishnapuram. Ashwin, a Chennai native and one of India's top wicket takers in tests, is known for his match-winning spells and continues to contribute to the game by training students from the city's corporation schools in cricket. He is also set to play for Chennai Super Kings in the upcoming IPL season.
अब महाराष्ट्र की खबर. महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पाठ्यक्रम को अपनाएगा. मुंबई में मीडिया से बातचीत में श्री भूसे ने बताया कि CBSE पैटर्न दो चरणों में लागू किया जाएगा. वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड MSBSHE कक्षा 10 SSC और 12वीं कक्षा HSC की परीक्षाएं आयोजित करता है. पहले चरण में CBSE को स्टैंडर्ड 1 में पेश किया जाएगा और अगले वर्ष शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को नए पैटर्न में प्रशिक्षण दिया जाएगा. दूसरे चरण में CBSE पाठ्यक्रम को शेष सभी कक्षाओं में लागू किया जाएगा. श्री भूसे ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र का इतिहास, भूगोल और मराठी भाषा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बने रहेंगे. महाराष्ट्र की एक और खबर. डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने प्रत्यय नामक एक कागज रहित संशोधन और अपील प्रणाली शुरू की है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर वावनकुले ने मुंबई में इस प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट व्हिच इज फ्रॉम बेंगलुरु. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has announced formation of a team that will prevent pollution of and encroachment on Kaveri riverbank. He was speaking to the media persons at Bhagamandala, where it is believed that Kaveri River is born. He further added that the government will launch aarti ceremony at this riverbank to send a message of water conservation. The funds are earmarked for the aarti ceremony and the frequency will be determined in the days to come. Shivakumar said that the artists from Kodagu will be invited to be part of the aarti ceremony. He noted that Kodagu provides Kaveri River, which is the lifeline of Bengaluru city. Hence, he pointed out that the first aarti must be dedicated to Tal Kaveri. He informed that the government has launched a week-long awareness campaign on water conservation. An oath was administered on this occasion to prevent misuse of water.
की खबर. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन के 158 बेस अस्पताल में मोतियाबिंद नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन गुरुवार को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने किया. ये शिविर 24 मार्च तक चलेगा. इसका उद्देश्य 350 से अधिक दिग्गजों, आश्रितों और चुनिंदा नागरिकों की दृष्टि बहाल करना है. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित ये पहल स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण के प्रति भारतीय सेना के समर्पण को दर्शाती है. त्रिशक्ति कोर के तहत आयोजित ये पहल सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों की दृष्टि देखभाल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है. इस क्षेत्र में आयोजित ये शिविर उच्च गुणवत्ता वाले नेत्र चिकित्सा उपचार को दर्शाता है, जो पूर्वी क्षेत्र में दिग्गजों की स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का परिचायक है. मेडिकल टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर संजय मिश्रा कर रहे हैं. वे एक प्रतिष्ठित नेत्र सर्जन है और आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में नेत्र रोग विभाग के प्रमुख हैं. टीम में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल विशेषज्ञ, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 3 दिनों में 300 से 350 सर्जरी करना है. मरीज अत्याधुनिक उपकरणों और उच्च गुणवत्ता वाले लेंस के साथ सर्वोत्तम नेत्र चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त हैं. सैन्य नागरिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कुछ नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी भी की जाती है. यह कदम सामुदायिक जुड़ाव में भारतीय सेना की भूमिका को सुदृढ़ बनाता है. देहरादून, उत्तराखंड, जयपुर और राजस्थान में अत्यधिक सफल शिविरों के बाद भारतीय सेना द्वारा आयोजित यह तीसरा शिविर है.
Now let's turn our attention to Telangana. After a spell of heat wave that raised the temperatures, Hyderabad city has now cooled down with a round of strong thunderstorms across the city. The heat wave that started off 10 days ago subsided gradually with a thunderstorm last night as the city witnessed rains in many parts. Several areas of Hyderabad, including Madhapur, Jubilee Hills, Banjara Hills, among others, received substantial rainfall with a strong downpour. Met officials issued an alert that districts including Jagtiyal, Pedapalli, Jaishankar Bhupalpalli, Warangal, Hanamkonda and Jangaon may see isolated hailstorms today. Well, I have one more update here from Telangana. Manoj? Ji. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has urged the National Bank for Agriculture and Rural Development Chairman Shaji KV to consider offering loans at lower interest rates through the RIDF and to approve necessary funding for micro irrigation projects.
और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहां का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
जी मनोज, वी विल स्टार्ट विद चेन्नई अगेन। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius. Note.
जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 22 मार्च है।
And as we were talking about World Water Day today, right, in the beginning, Manoj, well, World Water Day, which is being observed today, this day actually highlights the importance of fresh water and also advocate for the sustainable management of water resources. And listeners, the global event, this aims to raise awareness and inspire actions to tackle the water crisis worldwide. Well, the theme of World Water Day this year is glacier preservation, emphasizing the critical role that glaciers they have in maintaining global fresh water supplies and the urgent need for conservation measures in the face of climate change. And now, listeners, we'll take you way back in time. In the year 1793, Lord Cornwallis, he promulgated permanent settlement in Bengal and Bihar to fix the revenue amounts once and for all to be paid by the zamindars every year. Moving ahead, in the year 1794, Congress banned US vessels from supplying slaves to other countries. In the year 1872, Illinois became the first state to require sexual equality in employment. In the year 1872, this was. In the year 1888, English Football League was established.
और आज ही के दिन 1890 में रामचंद्र चैटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने।
In the year 1902, Great Britain and Persia agreed to link Europe and India by telegraph. And Manoj, there is also another thing that I want to talk about. Well, Bihar is celebrating its 113th Foundation Day today. The state of Bihar was carved out from Bengal Presidency during British rule on 22nd of March in the year 1912. And this day is celebrated as Bihar Divas.
Jee. 1942 में आज ही के दिन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना और वायुसेना ने पोर्ट ब्लेयर में आज ही के दिन कदम रखा।
In 1957, Republic of India adopted the Shak calendar along with Gregorian, the national calendar based on Shak Samvat. It was adopted.
जी, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में आज ही के दिन लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए।
In the year 1993, we're moving ahead now, the Lok Sabha passed the Indian Medical Council Amendment Bill 1993 and the Dentists Amendment Bill 1993.
1964 में आज ही के दिन कलकत्ता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ। 1969 में आज ही के दिन भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ। 1977 में आज ही के दिन आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा।
एंड नाउ वी विल मूव अहेड टू 2000। The year 2000, India's first third-generation satellite INSAT-3B was put in orbit by Europe's latest Ariane 5 rocket from Kourou in French Guiana.
1995 में आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पेलियाकोव 14.5 माह के रिकॉर्ड अंतरिक्ष प्रवास के पश्चात पृथ्वी के लिए रवाना हुए और 1999 में आज ही के दिन शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आज ही के दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था और शगुन अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है।
यस वी विल स्टार्ट विद योहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ, German writer, philosopher and thinker. Well, he worked in various fields like poetry, drama, religion, humanity and science. And he's one of the preeminent figures in German literature. He initially studied law, but sometimes as there are other things that bring you recognition, and in his case, he received accolades for his poetry and completed his first collection, Annette. Then when he was pursuing Manoj, he was pursuing law as well, which was a collection of poems. He had a profound impact on later literary movements, including expressionism, and made important contributions also to other fields such as philosophical and naturalist schools of thought here.
आज पुण्यतिथि है हनुमान प्रसाद पोद्दार की। वे गीता प्रेस स्थापित करने के लिए भारत व विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारतीय आध्यात्मिक जगत पर हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम का एक ऐसा सूरज उदय हुआ जिसकी वजह से देश के घर घर में गीता, रामायण, वेद और पुराण जैसे ग्रंथ पहुंच सके। आज गीता प्रेस गोरखपुर का नाम किसी भी भारतीय के लिए अनजाना नहीं है। सनातन हिंदू संस्कृति में आस्था रखने वाला दुनिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से परिचित नहीं होगा। इस देश में और दुनिया के हर कोने में रामायण, गीता, वेद, पुराण और उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषियों मुनियों की कथाओं को पहुंचाने का एकमात्र श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार को है। प्रचार प्रसार से दूर रहकर एक अकिंचन सेवक और निष्काम कर्मयोगी की तरह पोद्दार जी ने हिंदू संस्कृति की मान्यताओं को घर घर तक पहुँचाने में जो योगदान दिया है, इतिहास में उसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है।
Now, moving on, let's talk about Jonathan Edwards, philosopher, well, and also a theologian. Edwards, he is widely regarded as one of America's most important and original philosophical theologians. And theology, it involves study of religious texts and religious themes, etc., right, Manoj?
Ji. आज पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी की। उन्होंने कभी कभी चांदनी सिलसिला, नूरी, दीवाना, रंग, जिंदगी, कर्मयोगी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी। एक नाटक प्रेमी होने के साथ ही उन्होंने फिल्मों के संवाद लेखन और निर्देशन भी किया। स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी वे ही थे। सागर सरहदी ने रंगमंच की दुनिया में फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों को मौका दिया था। उनका नाम उन सितारों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म बाजार से उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह थे। सन 1982 में रिलीज हुई ये फिल्म इंडियन क्लासिक मानी जाती है। सागर सरहदी इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और राइटर तीनों थे।
कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं।
तेरे मेरे हाथ
And now we will talk about Stephen Sondheim, composer and lyricist. Well, he's regarded as one of the most important figures in the 20th century musical theater, and he's credited with reinventing musical. Well, musical involves live singing along with music, and lots of performers are over there on the stage as well, listeners. And his frequent collaborators were Harold Prince and James Lapine. And his Broadway musicals, they tackled unexpected themes that ranged beyond the genre's traditional subjects and also addressed the human experience. His music and lyrics, they are tinged and they are full of complexity, also sophistication about various aspects of life. And today we are playing for you this wonderful musical. A funny thing happened on the way to the forum. Listen in.
Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing for kings, nothing for crowns, bring on the lovers.
आज जयंती है मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री और निर्देशक शीला सेलिन की. उन्होंने नायक प्रेम नजीर के साथ जोड़ी बनाकर एक साथ सबसे अधिक 130 फिल्मों में अभिनय करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. शीला केरल राज्य फिल्म पुरस्कार की 4 बार की विजेता हैं. वे 22 साल के बाद 2003 में मना सिन्न कारे के जरिए अभिनय में वापस आई. 2005 में उन्होंने मलयालम फिल्म अकाले में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता.
नंदिनी पशुवीन अगिड़ निरये पाल, अगिड़ निरये पाल.
Well, today we're also remembering Yashwant Vithoba Chittal. Well, among the most important Kannada writers of the 20th century, he has been. Well, the stories that he framed for us, they form the background for Chittal's story, which were actually initiated in his small coastal village in Uttar Kannada, Hanhali, and in much the way that the same that Malgudi did for R.K. Narayan's stories. Well, a natural and meticulous storyteller, he's among the most important Kannada writers and had published 2 collections of short stories before he came out with his first novels. And like many of his short stories, his works were inspired by his own boyhood and youth.
Aaj jayanti hai रागनी त्रिवेदी की. वे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं. वे विचित्र वीणा, सितार और जल तरंग पर प्रस्तुति देती हैं. आज जयंती है मास्टर दास सूर्जो सेन की. वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में गिने जाते हैं. भारत भूमि पर अनेक शहीदों ने क्रांति की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की राहों को रोशन किया है. इन्हीं में से एक सूर्जो सेन नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे. चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी थी. सरकार उनकी वीरता और साहस से इस प्रकार हिल गई थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें ऐसी हृदय विदारक व अमानवीय यातनाएं दी गईं जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
ये देश है मेरा. Well, today we are also remembering Robert Andrews Millikan, the physicist. Today it's his birth anniversary, and he received the Nobel Prize in Physics in 1923 for his work on the elementary charge of electricity.
और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.